नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने बुधवार को कहा कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कोयला और अन्य प्रतिबंधित ईंधन का उपयोग करने वाले उद्योगों को 1 जनवरी से बंद किया जाएगा और उन सब पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि बिजली घरों में कम सल्फर वाले कोयले के उपयोग की अनुमति होगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के एक अधिकारी ने कहा, प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि वे कोयला समेत बिना मंजूरी वाले ईंधन का उपयोग करने वाले उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बिना कोई कारण बताओ नोटिस दिए बंद करे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के तहत उनसे अधिकतम जुर्माना लिया जाएगा। अधिकारी ने साफ किया कि निजी उपयोग वाले बिजली घरों को कम सल्फर वाले कोयले के उपयोग की अनुमति होगी। इसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जा सकता है। लकड़ी और जैव ईंधन का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों और दाह संस्कार के लिए किया जा सकता है। लकड़ी या बांस के चारकोल का उपयोग होटल, रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल, उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के साथ और खुले भोजनालयों या ढाबों में किया जा सकता है। कपड़ा प्रेस करने के लिए लकड़ी के चारकोल के उपयोग की अनुमति है। जीवन का अभिन्न अंग बन चुके सोशल मीडिया ने साल 2022 में कई उतार चढ़ाव देखे। इस दौरान अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने ट्विटर पर अधिग्रहण किया और वादा किया कि वे इस मंच को अधिक जवाबदेह बनाएंगे। उन्होंने डेटा सुरक्षा के लिए नए मानदंडों पर काम शुरू किया और बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। मेटा ने कहा कि वह अपने वैश्विक कार्यबल के 13% या 11,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी करेगी। कंपनी ने कहा कि बढ़ती लागत और विज्ञापन आय पर दबाव के चलते ऐसा किया जा रहा है। मस्क ने सशुल्क सत्यापन, ट्विटर पर आजीवन प्रतिबंध खत्म करने और ट्विटर पोल के जरिए सुर्खियां बटोरी। इस बीच बिरियल जैसे नए ऐप्स ने इंस्टाग्राम क्लिक के अवास्तविक मानकों से ऊब चुके लोगों को रिझाया। फिनिक्स लीगल के भागीदार प्रणव श्रीवास्तव ने कहा, साल 2022 में दुनिया सामान्य स्थिति में आ गई, लेकिन उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया मनोरंजन का प्रमुख स्रोत बना रहा। टम्बलर ने टिप जार फीचर पेश किया और यूट्यूब ने क्रिएटर्स की सामग्री के लिए पैसे कमाने के नए तरीकों की घोषणा की। हर साल की तरह इस साल भी सोशल मीडिया पर सेल्फी छाई रही। नियामकीय पक्ष पर बात करें तो सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए IT नियमों में संशोधन किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि देश का 2024 के अंत तक वाहन उद्योग का आकार दोगुना कर 15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके साथ भारत इस क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल होगा। गडकरी ने ये भी कहा कि उनका मंत्रालय अगले साल 5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम करेगा। इसमें 2 लाख करोड़ रुपए सरकार से और शेष पूंजी बाजार से जुटाई जाएगी। उन्होंने उद्योग मंडल मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑनलाइन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, फिलहाल वाहन उद्योग का आकार 7.5 लाख करोड़ रुपए है और हम इसे 2024 तक 15 लाख करोड़ रुपए करना चाहते हैं। इसके साथ ही भारत इस क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल होगा। गडकरी ने ये भी कहा कि 2030 तक ज्यादातर वाहन वैकल्पिक ईंधनों पर चलेंगे। उन्होंने कहा, हम बायो एथेनॉल, बायो CNG, बायो LNG और हरित हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक स्वच्छ और हरित ईंधन विकसित करने पर भी काम कर रहे हैं। गडकरी ने कहा कि हरित हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन होगा। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI ने बुधवार को कहा कि मोबाइल सेवाओं के लिए 6 GHz बैंड को चिन्हित करना महत्वपूर्ण है। उद्योग निकाय ने कहा कि देश में 5G मोबाइल नेटवर्क को तेजी से और किफायती ढंग से तैयार करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। COAI ने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन को पूरा करने के लिए 6 GHz स्पेक्ट्रम महत्वपूर्ण है। COAI ने कहा कि यदि 6 GHz बैंड में पर्याप्त स्पेक्ट्रम IMT को आवंटित नहीं किया गया तो देश को 5G सेवाओं से अपेक्षित प्रदर्शन हासिल करने में लगभग 60% अधिक वार्षिक लागत चुकानी होगी। COAI ने आगाह किया कि इससे विस्तार में देरी होगी और ऊर्जा खपत तथा रेडियो नेटवर्क लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। COAI के महानिदेशक SP कोचर ने एक बयान में कहा, उद्योग का दृढ़ विश्वास है कि IMT सेवाओं के लिए 6 GHz बैंड को चिन्हित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न केवल दीर्घकालिक नेटवर्क योजना में मदद मिलेगी बल्कि ये 2025 के बाद मोबाइल संचार के लिए महत्वपूर्ण होगा। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख और विदेशी पूंजी की निकासी जारी रहने के बीच बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट हुई। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 383.19 अंक गिरकर 60,527.09 अंक पर आ गया। व्यापक एनएसई निफ्टी 110.7 अंक टूटकर 18,011.80 अंक पर था। सेंसेक्स में टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्फ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति और HDFC गिरने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे। दूसरी ओर टाटा स्टील और भारती एयरटेल में बढ़त हुई। अन्य एशियाई बाजारों में सियोल, टोक्यो, शंघाई और हांगकांग के बाजारों में गिरावट थी। अमेरिकी बाजार भी बुधवार को नुकसान में बंद हुए थे। पिछले कारोबारी सत्र में बुधवार को बीएसई का 30 शेयर वाला सेंसेक्स 17.15 अंक यानी 0.03% की गिरावट के साथ 60,910.28 अंक पर बंद हुआ था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।